दोस्तों, हाल ही में एक भारतीय वेबसाइट ने खबर छापी है कि कथित रूप से कैम्ब्रिज एनालिटिका फर्म ने भारत में 68 पत्रकारों, लेखकों और ब्यूरोक्रेट्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध लिखने के लिए पैसे दिए थे। इन गंभीर आरोपों के चलते हमने सबसे पहले संपर्क साधा वरिष्ठ पत्रकार और SPMRF फाउंडेशन में सीनियर फेलो हर्षवर्धन त्रिपाठी से और इस खबर के बारे में पूछा।
दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए, और क्योंकि उसमें जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता है KC त्यागी, उनके बेटे का ये इंडियन पार्टनरशिप उनकी है, तो इसलिए उधर भी आरोप गए। लेकिन जो ये नया मामला आया, जिसको प्रशांत उमराव है जिन्होंने इस मामले को उठाया, कि 68 ऐसे लोग हैं जो राइटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स हैं, या दूसरी जो फील्ड है उसमें जो सेलिब्रिटीज हैं, उनको लगातार पैसे दिए जा रहे हैं, और वो मोटी रकम बताई जा रही है कि हर महीने 2 लाख से 5 लाख रुपए तक लोगों को दिए जा रहे हैं, और उसके आधार पर वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ जहां जहां उनको मौका लगता है वो ऐसा लिख रहे हैं। अब एक जो इसमें बड़ी चीज है कि इसको यहाँ पोस्टकार्ड न्यूज है, एक वेबसाइट है जिसने इसको उठाया, और अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में इस पे बहुत चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन जो सोशल मीडिया है वो ये सवाल जरूर खड़े कर रहा है कि आखिर वो कौन से लोग हैं। या तो ये खबर पूरी तरह से खारिज करने की बात हो कि ऐसा कुछ नहीं है, जो ना तो कैम्ब्रिज एनालिटिका की तरफ से आया है और ना ही अभी कांग्रेस ने इस पर कोई भी रिस्पॉन्स दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये बड़ी बहस है कि क्या उन लोगों के नाम सामने नहीं आने चाहिए। और सब ये इस बहस की वजह भी है कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले, और या उसको और थोड़ा सा पीछे ले जाएं, तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते जिन लोगों ने, जिन सेट ऑफ पर्संस ने चिट्ठी लिखी थी कि इनको वीजा नहीं दिया जाना चाहिए, इनको दुनिया के देशों से स्वीकृति नहीं मिलनी चाहिए, और फिर जब वो प्रधानमंत्री बनने लगे तब जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी, और एक पूरा सेट था जिन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी तो हम देश छोड़ के चले जाएंगे, ये शायद दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी एक व्यक्ति के खिलाफ इतनी बड़ी तैयारी, अगर हम उसको कहें कि इंटेलेक्चुअल क्लास से आती हो। इसीलिए आज ये सवाल और बड़ा हो जाता है, क्योंकि 4 साल पूरे हो चुके हैं सरकार को, 2019 में चुनाव होना है, तो इस वक्त इस खबर के आने के मायने बढ़ जाते हैं, और जिस तरह से लोगों के एक सेट ऑफ पीपल हैं जो इस तरह की चीजें लिखते हैं, तो वो सवाल भी बड़ा होता है कि क्या इसमें सच्चाई है, और अगर है तो उनके नाम सामने आने चाहिए।
अच्छा, ये बताइए हर्षवर्धन जी, कि दोनों पार्टियां, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है और बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि एक दूसरे ने इस फर्म की जो सेवाएं हैं उनका किसी ना किसी समय पर उपयोग किया है, तो क्या इस खबर के पीछे भी कुछ नजर आ रहा है कि क्या सच्चाई है?
देखिये, ये तो निश्चित तौर पर है कि दोनों पार्टियों ने, हो सकता है कुछ कुछ कभी उनकी सेवाएं ली हो, और जिस तरह से पार्टियां कैडर से वॉलंटियर बेस्ड होती जा रही है, यानी एक सेट ऑफ ग्रुप आता है, वो अपना एजेंडा तय करता है, एक कैंपेन चलाता है और उसका परिणाम लेके फिर वो दूसरी पार्टी के साथ चला जाता है। वो हमने देखा, यहाँ तक कि अगर हम कैम्ब्रिज एनालिटिका की बात ना भी करें तो प्रशांत किशोर से बड़ा उदाहरण कौन होगा कि सीधे पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे, फिर वो JDU के साथ गए, फिर कांग्रेस को चुनाव लड़ाया। तो ये पॉलिटिकल इवेंट मैनेजर्स हैं जो एक दूसरे के लिए काम करते हैं। लेकिन यहाँ चिंता की बात दूसरी है, जब इस तरह की खबर आती है कि आप पेड आर्टिकल्स लिखवाते हैं, आप किसी एक व्यक्ति के खिलाफ लिखवाते हैं, और एक ये भी देखने में आ रहा है कि जो एजेंडा वेबसाइट्स हैं वो किसी एक रेफरेंस को उठाती हैं और उसके जरिए वो खबर बनाती हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि चुनावी प्रबंधन में जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, पॉलिटिकल इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां, वो भारत में इस तरह के भी कामों में लगी हुई हैं। अब वो कौन से लोग हैं जो पैसे लेकर लिख रहे हैं या लिखवा रहे हैं, उसको तहकीकात भी होनी चाहिए और लोगों को भी पता चलना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है कि अगर आपकी राय तक का मतलब नहीं है, या आपकी राय को कहीं ना कहीं मोटिवेटेड एजेंडा के तहत डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, कम से कम अभी के मामले में ये बहुत साफ दिख रहा है।
जैसा आपने कहा कि कुछ एजेंडा वेबसाइट्स, एजेंडा एजेंसीज हो सकती है, यही आरोप जो है दक्षिणपंथी और वामपंथी एक दूसरे पर लगाते रहते हैं, लेफ्ट राइट दोनों, लेकिन क्या फिर भी अंततः आप क्या कहेंगे कि क्या इसे खारिज किया जाए, इसे खारिज नहीं करना चाहिए?
ठीक बात है कि जैसे लेफ्ट की एजेंडा वेबसाइट्स हैं, वैसे ढेर सारी राइटिस्ट प्रोपेगेंडा वेबसाइट्स भी हैं, लेकिन एक सवाल तो खड़ा होता है ना कि अगर कोई एक व्यक्ति कोई वेबसाइट इस तरह से 68 लोगों की बात कर रही है तो क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए, क्या उनका पता नहीं लगाया जाना चाहिए? और इसमें कोई दिक्कत नहीं कि अगर मेरा विचार है मैं कल को नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिखना चाहता हूं तो मैं लिखूं, लेकिन मैं किस आधार पर लिख रहा हूं? और वो इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इस वक्त हिंदुस्तान में ऐसे मसलों को उठाया जा रहा है और उसको बाकायदा अखबारों में जो संपादकीय पन्ने हैं और टीवी की डिबेट्स में कुछ लोग उसको ड्राइव करते हुए दिखते हैं, तो इस सवाल का जवाब खोजना ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो भी इसको जाना जाना चाहिए और तब फिर उस वेबसाइट को खारिज किया जाना चाहिए, उसको कंडक्ट किया जाना चाहिए।
लेकिन लेखक और वरिष्ठ पत्रकार राजेश सुंदरम का मानना है कि अभी तक की जानकारी को अगर देखें तो ये फेक न्यूज यानी गलत खबर प्रतीत होती है।
ये फिलहाल फेक न्यूज लग रही है क्योंकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है। अब दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी कुछ इसमें डिविएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया का जो ध्यान है उसको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ वो एक दूसरे को ब्लेम भी कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन जो जरूरत है जिस बात की वो ये है कि किस तरह से जो भारत के जो यूजर्स हैं सोशल मीडिया के, उनके हितों की कैसे रक्षा की जाए, उनकी प्राइवेसी की कैसे रक्षा की जाए, उस चीज पर ध्यान कम दिया जा रहा है और जो एक आरोप एक दूसरे पर लगाने की बातें हैं उस पर ज्यादा दिया जा रहा है। और मीडिया में इस तरह के जो फेक न्यूज है वो भी छोड़े जा रहे हैं ताकि जो लोगों का ध्यान है वो मेन मुद्दों से भटक जाए। जो रियल मुद्दा है वो ये है कि किस तरह से जो सोशल मीडिया के यूजर्स हैं भारत में उनकी प्राइवेसी को किस तरह से बचाया जाए, उसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है।